लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर अमानवीय जीवन परिस्थितियों में हाशिए पर जीवन यापन करने वालों के लिए हम आपसे याचना करते हैं, ताकि सरकारी, गैर सरकारी और कलीसियाई संस्थाओं द्वारा उनकी अनदेखी न की जाए और न ही उन्हें कम महत्व का समझा जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं, बुधवार ये आम दर्शन समारोह में मार्सेले की प्रेरितिक यात्रा पर संत पापा का संक्षिप्त विवरण, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में जमा हुए सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
फ्रातेली ए सोरेले, बोनजोर्नो। Alla fine della scorsa settimana sono recato a Marsiglia per partecipare alla conclusione del Rencontre Méditerranée che hanno coinvolto i vescovi e i sindaci dell'area mediterranea insieme con numerosi giovani.
पिछले सप्ताह के अंत में मैंने मार्सिले की यात्रा करते हुए भूमध्य सागरीय संगोष्ठी के समापन में भाग लिया, जिसमें बहुत से धर्माध्यक्ष गण और भूमध्य सागर प्रांतीय अधिकारियों के अलावे बहुत से युवा शामिल थे, जिससे उन्हें भविष्य हेतु नई दृष्टिकोण प्राप्त हो सके। वास्तव में मार्सिले के इस आयोजन की विषय वस्तु मोजाइक ऑफ होप, आशा की पच्चीकारी थी। यह एक सपना है, एक चुनौती जो भूमध्य सागरीय प्रांत को अपनी बुलाहट की खोज करने का निमंत्रण देता है, जो अपने में सभ्यता और शांति की एक प्रयोगशाला है। संत पापा ने कहा कि भूमध्य सागर, जैसे कि हम सभी जानते हैं, सभ्यता और जीवन का उद्गम स्थल है। यह अपने में अस्वीकार्य है कि यह एक कब्रगाह बने और ना ही युद्ध का एक स्थल। भूमध्य सागरीय प्रांत अपने में सभ्यताओं के मध्य संघर्ष, युद्ध, मानव व्यापार के एकदम विपरीत है। यह इससे पूरी तरह भिन्न है। भूमध्य सागर अफ्रीका, एशिया और यूरोप के संग संचार का एक माध्यम है। इसे हम उत्तर और दक्षिण के बीच, पूरब और पश्चिम के मध्य, लोगों और संस्कृतियों, देशों और भाषाओं, दर्शनों और धर्मों के बीच वार्ता के एक साधन स्वरूप पाते हैं। निसंदेह समुद्र सदैव एक गर्त की ओर इंगित कराता है, जिस पर किसी न किसी तरह से काबू पाना होता है, और यह हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन इसका जल जीवन की समृद्धियों को सुरक्षित रखता है। इसकी लहरें और वायु में हम विभिन्न प्रकार के जहाजों को पाते हैं। इसके पूर्वी तट से 2000 साल पहले हम यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार को पाते हैं। संत पापा ने कहा,
questo naturalmente non viene per magia e non si realizza una volta per tutte.
निश्चय ही यह जादुई रूप में नहीं हुआ और ना ही यह एक बार में सदैव के लिए पूरी हुई। यह एक यात्रा का फल रहा, जिसे हर पीढ़ी अपने समय की निशानियों और जीवन को देखते हुए एक छोटे रूप में पूरा करने को बुलाई जाती है। मार्सिले की संगोष्ठी सन 2020 में बारी और विगत साल फ्लोरेंस में हुई बैठक की तरह समापन हुई। यह कोई एक अलग घटना नहीं थी, बल्कि यह सन 1950 के अंत में फ्लोरेंस के मेयर जॉर्जियो लापीरा द्वारा आयोजित मेडिटेरेनियन कोलोक्विया के साथ शुरू हुई यात्रा को और एक कदम आगे ले चलना था। संत पापा पॉल चतुर्थ के विश्व पत्र पॉपुलरुम प्रोग्रेसियो में किए गए अपील को एक कदम आगे ले जाना था, जो हमें एक अधिक मानवीय विश्व समाज को बढ़ावा देने की मांग करता है, जहां सभी एक दूसरे के संग आदान प्रदान कर सकते हैं, जहां किसी का विकास दूसरों की कीमत पर खरीदी नहीं जाती हो। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि मार्सिल्ले की घटना का प्रभाव क्या रहा। उन्होंने कहा कि भूमध्य सागरीय संगोष्ठी से जो बात उभर कर आई, मैं उसे साधारण शब्दों में मानवीय की संज्ञा देता हूँ। यह न तो वैचारिक, न ही योजनारत, न राजनीतिक रूप से सही और न ही कोई साधन रहा, वरन यह मानवीय अर्थात हमने इससे हर चीज को व्यक्ति के प्राथमिक मूल्य और उसके अनुलंघनीय गरिमा से जुड़ता हुआ पाया। वहीं हमने एक आशावादी दृष्टिकोण को उभरते पाया। यह अपने में बहुत ही आश्चर्यजनक है जब हम उन लोगों के साक्ष्य को सुनते हैं जिन्होंने विभिन्न अमानवीय परिस्थितियों में जीवन यापन किया है या उसका शिकार हुए हैं। वे स्वयं अपने जीवन के द्वारा आशा का साक्ष्य देते हैं। संत पापा ने कहा,
फ्रेटेली ए सोरेले, क्वेस्टा स्पिरांसा, क्वेस्टा फ्रेटर्निटा नो देवे वोलाटिसारसी।
प्रिय भाइयों एवं बहनों, यह आशा, यह भ्रातृत्व हमसे विमुख ना हो, बल्कि यह हमें संगठित होने में मदद करे। यह हमें ठोस रूप में लंबी, मध्य और अल्पकालीन कार्यों को करने में सहायता करे, जिससे लोग मानवीय सम्मान में प्रवासन करने या प्रवासन ना करने का चुनाव कर सकें। भूमध्य सागर हमारे लिए आशा का एक संदेश बने। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। यूरोपीय समाज में हमें आशा को स्थापित करने की जरूरत है, विशेष रूप से नई पीढ़ियों में, संत पापा ने कहा। वास्तव में हम दूसरों का स्वागत कैसे कर सकते हैं यदि हम स्वयं भविष्य की एक क्षितिज को अपने लिए खुला नहीं पाते हों। युवा जन जो अपनी आशा में कमजोर हैं, अपने को व्यक्तिगत जीवन में बंद पाते हैं, अपनी अनिश्चितता को लेकर चिंतित हैं, अपने को खोलते हुए दूसरों से मिलते और अपने जीवन को कैसे साझा कर सकते हैं।
Le nostre società tante volte ammalate di individualismo, di consumismo, di vuote evasioni hanno bisogno di aprirsi.
बहुधा हमारा समाज व्यक्तिगतवाद, भौतिकतावाद और झूठे दिखावे से ग्रसित है। हमें अपने को, अपने हृदयों और आत्मा को सांस लेने हेतु खोलने की जरूरत है। ऐसा करने के द्वारा हम अपने संकटों को समझने के योग्य होते हैं, जो हमारे लिए एक अवसर बनता और इस भांति हम उसका सामना सकारात्मक रूप में करते हैं। संत पापा ने कहा कि यूरोप को जोश और उत्साह पुनः प्राप्त करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, और मैं कह सकता हूँ कि मैंने इस जोश और उत्साह को मार्सिल्ले के पुरोहितों, कार्डिनल अविलीने, धर्म बंधुओं और समर्पित लोगों, विश्वासियों में जो करुणा शिक्षण के कार्य हेतु समर्पित हैं, में पाया। लोग धर्मी जिन्होंने वेलड्रोम स्टेडियम में गर्म जोशी स्वागत दिखलाया। संत पापा ने राष्ट्रपति और सभों के प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव प्रकट किए, जो फ्रांस के नागरिकों का साक्ष्य प्रस्तुत करता है जिन्होंने मार्सिल्ले की घटना पर ध्यान दिया। उन्होंने नोत्र डेम के ला गार्दे की कुमारी मरियम के चरणों में मार्सिल्ले वासियों को सुपुर्द करते हुए यह आशा व्यक्त की कि उनका सहचर्य भूमध्य सागरीय प्रांत के लोगों के साथ सदा बना रहे, जिससे वे सभ्यता और आशा के एक मोजाइक बन सकें, जिसके लिए वे सदैव जाने जाते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने मार्सिल्ले की अपनी प्रेरितिक यात्रा का संक्षिप्त विवरण समाप्त किया और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
दुनिया के लोग रखो के वही एक खुदा है।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में बुधवारी आम दर्शन समारोह के दौरान यूक्रेन के पीड़ित लोगों के लिए अपनी नवीनतम हार्दिक अपील की। उन्होंने कहा, यूक्रेन के अपने भाइयों और बहनों को याद रखें जो अपनी युद्धग्रस्त मातृभूमि को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। वे मदद, शरण और सद्भावना चाहते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने पोलिश भाषी विश्वासियों को युद्ध के कारण भागने के लिए मजबूर अपने यूक्रेनी पड़ोसियों का स्वागत करना जारी रखने हेतु प्रोत्साहित किया। संत पापा ने उपस्थित सभी पोलिश तीर्थ यात्रियों और टीवी के माध्यम से आम दर्शन समारोह में भाग ले रहे सभी पोलिश तीर्थ यात्रियों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद देने से पहले कहा, चूंकि वे आपके देश में शरण, मदद और सद्भावना चाहते हैं, उनका मसीह जैसा स्वागत करें। फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत की, इसके बाद से ही संत पापा फ्रांसिस ने पीड़ित यूक्रेनी लोगों की मदद करने, युद्ध को समाप्त करने और शांति बहाल करने के सभी प्रयासों के लिए अनगिनत अपीलें की हैं। युद्ध की शुरुआत से ही पोलैंड यूक्रेनी शरणार्थियों का स्वागत करने और उनकी मदद करने वाले देशों में सबसे आगे रहा है। और कैथोलिक कलीसिया आज संत विंसेंट डी पॉल का पर्व मनाती है, जिन्होंने प्रभु येसु के प्रेम से प्रेरित होकर खुद को गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों की सेवा हेतु समर्पित कर दिया। संत पापा फ्रांसिस ने आज ट्वीट कर संत विंसेंट डी पॉल की तरह गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद करने हेतु सभी ख्रिस्तियों को प्रेरित किया। ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, आज हम संत विंसेंट डी पॉल का पर्व मना रहे हैं, जिन्होंने ईसा मसीह के प्रेम से प्रेरित होकर खुद को गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनका उदाहरण हमें भी अपने जरूरतमंद भाइयों और बहनों के करीब आने के लिए प्रेरित करे। दूसरे ट्वीट में संत पापा फ्रांसिस ने लिखा, ईश्वर का कार्य हमेशा भाईचारे से होकर गुजरता है, पुरुषों और महिलाओं की आंखों, हाथों, पैरों और दिलों से होकर गुजरता है। कलीसिया और नागरिक जिम्मेदारी की अपनी भूमिका निभाने वाले भाईचारे के रिश्ते और सामाजिक मित्रता बनाने की कोशिश करते हैं। उधर मंगलवार 26 सितंबर को भारत, नेपाल और पाकिस्तान के कैथोलिक विश्वविद्यालयों के 12 छात्रों के साथ संत पापा फ्रांसिस का आभासी संवाद लैटिन अमेरिका के लिए पोंटिफिकल कमीशन और शिकागो के लोयोला विश्वविद्यालय की बिल्डिंग ब्रिजेस के तहत की गई। धार्मिक स्वतंत्रता और गवाही, बदमाशी और युवा आत्महत्या, सामाजिक नेटवर्क और मीडिया साक्षरता पर चर्चा की गई। दक्षिण एशिया में 3 कैथोलिक विश्वविद्यालय के छात्र भारत से दिल्ली के फ्लोरिना, नेपाल से न्यारा और पाकिस्तान से शेरिल जूम के माध्यम से एक गहन संवाद में संत पापा फ्रांसिस को अंग्रेजी में संपादकीय और कभी कभी कट्टरपंथी समाजों द्वारा भेदभाव, पूर्वाग्रह और उत्पीड़न के बारे में बताया। उन्होंने संत पापा को बेहतर भविष्य के अपने सपने, अपने विश्वास को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र न होने की कठिनाई और हताशा और इसे लड़खड़ाते देखने के डर के बारे में बताया। संत पापा मुस्कुराते हुए स्पानी भाषा में जवाब देते हुए कहा कि 3 युवाओं की गवाही मेरे दिल को छूती है और पाकिस्तानी आसिया बीबी की शहादत को याद दिलाती है, जो मतभेदों के भय से पैदा हुई कट्टरता की निर्दोष शिकार थी, जो भाईचारा विरोधी भेदभाव पैदा करता है। इसका कारण सामाजिक मूल्यों का विचारों में कम होना है और जो कोई भी मेरी तरह नहीं सोचता, मैं एक अपराधी, दोषी व्यक्ति और फिर शहीद में बदल जाता हूँ। लेकिन इस तरह हम अपनी सांस्कृतिक आत्महत्या के विचारक बन जाते हैं। इतनी अधिक धर्मनिरपेक्षता के सामने संत पापा कहते हैं कि ईश्वर के पास हम प्रत्येक के लिए एक योजना है। हमारे पिताओं ने मुक्तिदाता के रूप में यीशु को पहचाना और आप सपना देखें कि हम अलग अलग दृष्टिकोणों के साथ हाथ फैलाकर जी सकते हैं। इससे सबका विकास होता है। हाथ फैलाए, सदैव क्षमा करते हुए अपने जीवन की गवाही देते हुए आगे बढ़ें। तीन अन्य युवा सामाजिक नेटवर्क और युवा आत्महत्या सहित बदमाशी के मुद्दों को संबोधित करते हैं। बेंगलोर में रसायन विज्ञान की छात्रा मेरलिन रोज ने कहा कि एक युवा लड़की के रूप में उसका उपहास किया गया था क्योंकि उसका शरीर समाज के सौंदर्य के मानकों के अनुरूप नहीं था। संत पापा ने यह कहते हुए जवाब दिया कि बचपन में उसकी कक्षा में एक बहुत मोटा लड़का था। एक बार वह फर्श पर गिर गया और हम सहपाठी उस पर हंस दिए, लेकिन जब मेरे पिता को पता चला तो उन्होंने मुझे उससे माफी मांगने के लिए उसके घर भेजा। वर्षों बाद जब संत पापा उनसे मिले तब वे पुरोहित बन गए थे। संत पापा ने कहा कि उसका सहपाठी बदमाशी के आघात पर काबू पाकर एक पुरोहित बन गया। हर किसी की अपनी सुंदरता होती है। आपको यह जानना होगा कि आंतरिक और बाहरी सामंजस्य में कैसे इसे पहचाना जाए। एशिया में आप जानते हैं कि मतभेदों की सुंदरता कैसे बनाई जाती है। हर चीज को एकीकृत करने के प्रलोभन में ना पड़ें। संत पापा ने आगे कहा कि एक युवक आत्महत्या कर लेता है जब उसे कोई क्षितिज नहीं दिखता। वह अपने सपनों के दरवाजे बंद कर लेता है। उसे असफलता से उबरने में मदद मिलनी चाहिए। केरल के जोसेफ और बेंगलोर की मेरी लवीना ने एशिया में इंटरनेट की चुनौती और युवा लोगों के लिए मीडिया साक्षरता के महत्व के बारे में बातें की। वे वेब की खूबियों और खतरों पर प्रकाश डालते हैं जिसने कई लोगों को व्यापक जानकारी तक पहुंच दी है, लेकिन धार्मिक और जातीय तनाव और राजनीतिक ध्रुवीकरण भी बढ़ाया है। जिन लोगों के पास डिजिटल प्रौद्योगिकियों तक पहुंच है और जिनके पास नहीं है, उनके बीच अंतर को कम करने और चुनौती जीतने के बारे में संत पापा ने कहा, हमें मन, हृदय और हाथों की भाषा की और ढेर सारी रचनात्मकता की आवश्यकता है, क्योंकि हम में से प्रत्येक एक कविता है। विचारधारा मस्तिष्क को छोटा कर देती है, हृदय को छोटा और हाथों को पंगु बना देती है। विचारधाराओं से दूर रहें और प्रौद्योगिकियों तक पहुंच में समानता लाने का प्रयास करें। इससे इंटरनेट एक बेहतर जगह बन जाएगा। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।